सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं सिद्धमणन्तमणिन्दिय मणुवमपत्थसौखमणवज्रं केवलपहोहणिज्य दुन्नयतिमिरं जिनं नमः। श्री वीरसेन आचार्य ने दौला नाम की जो टीका रची है, मूल ग्रंथ का नाम है षटखंडागम, जो भूत बलि और पुष्पदंत आचार्य ने लिखा था धरसेन आचार्य जी के उपदेश के अनुसार, और उस पर वीरसेन आचार्य ने जो दौला टीका लिखी है उसका अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं। पेज नंबर हम 13 पर आए थे। थोड़ी कल हमने क्या देखा उसको देखकर फिर अब हम आगे बढ़ेंगे। हमने ये बात देखी थी कि कोई भी ग्रंथ प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ में ही 6 बातें बताई जाती हैं। पेज नंबर 8 में हमने देखा था कौन सी 6 बातें हैं वे। तो मंगल, यानी पहले मंगलाचरण, मंगल किया जाता है, फिर ग्रंथ का निमित्त बताया जाता है, उसके पश्चात उसका हेतु, उसका प्रमाण यानी कितने श्लोक प्रमाण होगा ग्रंथ, ये बातें बताई जाती है, फिर ग्रंथ का नाम और ग्रंथ का कर्ता, इस तरह से ये 6 बातें बताई जाती है। तो कोई भी वस्तु हमें देखनी है उसके पश्चात, हमने आगे भी देखा था कि ये जो 6 बातें बताएंगे वो 6 बातें उन संबंधी भी 6 बातें सबके बताएंगे। जैसे मंगल बताना है तो मंगल का पहले धातु बताएंगे, कौन से धातु से वो शब्द बना है, वो धातु का क्या अर्थ है। तो धातु का अर्थ समझ में आए तो हमें शब्द का भी अर्थ समझने में आसानी होती है। तो पहली बात हुई धातु, फिर दूसरी बात उन्होंने कही थी निक्षेप, फिर नय, धातु निक्षेप नय, एकार्थ यानी उसके समान अर्थी अन्य शब्द, निरुक्ति यानी वो शब्द कैसा तैयार होता है उसको कहते हैं निरुक्ति, या उसकी उत्पत्ति कैसी, व्युत्पत्ति कैसी हुई, और अनुयोग। इस तरह से 6 अपेक्षाओं से वो एक एक जो मंगल है, निमित्त है, हेतु है, एक एक का वर्णन 6 अपेक्षाओं से कहेंगे। नहीं, यही 6, इन 6 अपेक्षाओं से हर एक को समझाएंगे। वो हमने 10 नंबर पेज पर देखा। ये तो शास्त्र के शुरू में ये बातें बताई जाती है, उसकी बात चल रही है। तो अभी हमने वो बता रहे हैं, धातु तो हमने देखा, यहाँ मंगल शब्द बता रहे हैं, तो मिग धातु है, मिग धातु से वो मंगल शब्द बना है। आगे हमने निक्षेप क्या है, नय क्या है, उसकी बिल्कुल शॉर्ट परिभाषा यहाँ बताएंगे, उसके जो विस्तार से वर्णन है वो आगे आएगा। तो 11 पेज पर हमने निक्षेप किसको कहना उसको देखे थे कि पदार्थ में निक्षेप करना यानी डालना। तो पदार्थ में हम कुछ डाल ही नहीं सकते, ना कुछ निकाल सकते हैं, तो पदार्थ का नाम रखना, रखना यानी उसके अंदर कुछ घुसाते नहीं है ना, पदार्थ को पहचानना है, किसी बाबत हमको डिस्कशन करना है तो पहले उस पदार्थ का नाम लेंगे, तो बार बार हम वी कैन रिफर इट अगेन एंड अगेन, तो उसका नाम रखना उसको कहते हैं नाम निक्षेप। किसी वस्तु में अन्य वस्तु है ऐसी कल्पना करना उसको कहते हैं स्थापना निक्षेप। जैसे पत्थर की मूर्ति है उसमें ये भगवान है ऐसी हम स्थापना करते हैं, ये निक्षेप का यूटिलाइजेशन, उसका उपयोग क्या है, तो लोक व्यवहार में आसानी हो, जैसे हम किसी को पुकारना है तो नाम होगा तो हम पुकार सकेंगे, ऐसे दिन है उसको बुला, उसको यानी किसको, घर में 10 आदमी हो तो उसको यानी किसको बुला, या कौन सी वस्तु संबंधी हम डिस्कशन, चर्चा, व्याख्यान कर रहे, तो लो लोक व्यवहार के लिए जो आसानी हो उसको ले कहते हैं वो निक्षेप है। वो सभी जो निक्षेप है, नाम है, स्थापना है, द्रव्य भाव, उसका भी हमें स्वरूप डिटेल में मालूम नहीं है, परंतु ये तो वस्तु में ये निक्षेप रखे जाते हैं और उस अपेक्षा से वस्तु को जाना जाता है। तो वस्तु में जो रखेंगे वो उसको हम निक्षेप कहेंगे, और उस निक्षेपों के द्वारा वस्तु को जानने वाला, यानी उस एक एक निक्षेप को जानने वाला, वो नए कहलाएगा। नए तो ज्ञान में होता है, और निक्षेप सामने जो ज्ञेय है, जो जानने में आ रही वस्तु, उसमें निक्षेप रखे जाते हैं। ख्याल है? यानी वस्तु के जो अलग अलग एंगल्स है उसको हम निक्षेप कहेंगे, और वो अलग अलग जो व्यूज है उस एंगल में उनको देखने का, उसको हम नए कहेंगे। ये अपनी अपनी भाषा में। ख्याल है? तो नए क्यों जरूरी है? तो नए वस्तु संबंधी हमारा यथार्थ निर्णय हो, इसलिए ये नए जरूरी है। कोई भी वस्तु जाननी है तो उसको नयों द्वारा, निक्षेपों द्वारा, प्रमाण द्वारा जानना चाहिए। ये बात अभी आगे आएगी। तो हमने नयों के बारे में देखा था कि नयों में दो मूल नय हमने देखे थे, एक द्रव्यार्थिक नय और एक पर्यायार्थिक नय। क्योंकि वस्तु तो सामान्य विशेषात्मक होती है, सामान्य और विशेष ये वस्तु के अंग है, बराबर। तो जो सामान्य को मुख्य करने, यहाँ मुख्य करने वाला शब्द है, अकेले सामान्य को ही जानता है सर्वथा, ऐसा नहीं कहा। परिभाषा में क्या लिखा है? मुख्यता से, मुख्यता ने जो दूसरा जो विशेष वाला जो भाग है उसको हमने अभी गौण रखा है, उसको स्वीकार करते हुए उसको गौण रखा है। यानी वस्तु में दोनों ही अंश है, सामान्य भी है और उसका विशेष भी है। फिर भी जब विशेष को हम गौण रखते हैं और सामान्य की मुख्यता से चर्चा करते हैं, तो सामान्य को मुख्य करने वाला उसको कहेंगे द्रव्यार्थिक नय। अब सामान्य को गौण करेंगे और विशेष की मुख्यता करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, उसको जानेंगे, तो उसको कहेंगे पर्यायार्थिक नय। पर्याय ने भेद, हमने भारत का उदाहरण देके समझाया था, अखंड भारत की हम चर्चा करेंगे तो वो हो गया द्रव्यार्थिक। वो भारत कैसा है, कितना लंबा फैला है, उसके पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है, दक्षिण उत्तर विस्तार कितना है, उसमें कितने पहाड़ है, कितने नगर है, कितनी नदियां हैं, ये हम उसको बिल्कुल विस्तार 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 करके समझेंगे, तो ये हो गया हम भेद को जान रहे, तो ये हो गया पर्यायार्थिक नय। जब भेदों को जान रहे, वो अखंड भारत हमारे ख्याल में है पीछे, वो अखंड भारत ही कैसा है उसको हम अनेक भेदों द्वारा समझ रहे, परंतु वो भेद ऐसे नहीं कि सर्वथा वो भारत से कोई अन्य है, भारत के ही है। पर जब हमको अभी समझ में आया भारत कैसा है, तो अभी वो हम पर्यायार्थिक आंख बंद कर देते हैं और फिर वो अखंड भारत ऐसा इतना सारा है ना, उसका इतना बड़ा है, इतनी नदियां है, उसमें इतने नगर है, इतने पहाड़ है, ये सब समझ में आ गया, तो हमें बहुत मेरा भारत महान ऐसा लगने लगा। तो ये अखंड एक भारत हमने ध्यान में ले लिया, तो उसको कहेंगे अभेद की दृष्टि, उसी को कहेंगे द्रव्यार्थिक नय। तो द्रव्यार्थिक नय के हमने तीन भेद देखे थे। पहला है नयगम नय। अच्छा, सात नय शास्त्र में, सात नयों की चर्चा आती है, तो उसमें पहला नयगम, दूसरे का नाम है संग्रह नय, तीसरा है व्यवहार नय, चौथे का नाम है रुजुसूत्र नय, फिर शब्द नय, समभिरूढ़ नय और एवं भूत नय। ये सात नयों में से जो पहले तीन है वो द्रव्यार्थिक नय है, वहाँ द्रव्य की मुख्यता से, यानी दो भिन्न भिन्न द्रव्यों में या सभी द्रव्यों में ऐसी वहाँ चर्चा होगी। द्रव्य के अंदर हम कोई डिवीजन नहीं कर रहे वहाँ, यानी द्रव्य में जो भेद होते हैं जिसको हम पर्याय कहते हैं, पर्याय ने भेद, यहाँ पर पर्याय ने भेद, तो द्रव्य के अंदर हम भेद नहीं पढ़ रहे। अखंड द्रव्य को लेते हैं, सभी द्रव्यों को मिलाकर हम संग्रह जिसको कहते हैं, सभी की इकट्ठी बात करना कि सत है कहते ही सभी द्रव्य उसमें आ गए। सत कहा ना, तो कौन सा द्रव्य सत नहीं है? छह द्रव्यों में से कौन सा द्रव्य सत नहीं है? सभी सत है, तो सभी द्रव्य सत कहते ही सभी द्रव्य उसमें आ गए, तो हम उसको कहेंगे ये संग्रह नय है। अभी सत शब्द द्वारा जिस सबको हमने इकट्ठा कर दिया तो हम कहेंगे ये जीव द्रव्य, ये पुद्गल द्रव्य, ये धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, उसमें हमने डिफरेंस बता दिया। इकट्ठे किए हुए में जो डिफरेंस बताता है वो है व्यवहार ने। फिर संग्रह ने कहा नहीं, ये सब जीव समान है, सब जीव उपयोग लक्षण वाले सब जीव समान है। वहां उसको इकट्ठा करने का उसका प्रयोजन क्या है, इकट्ठे ले लेना, तो हम कहेंगे वो भी संग्रह ने। और फिर वो जीवों में व्यवहार ने क्या कहेगा, ये मुक्त है, ये संसारी है, फिर उसमें भेद पड़ेगा। तो जहां जहां भेद की दृष्टि से विचार किया जाता है दो द्रव्यों में या अनेक ग्रुप्स में जो भेद पड़ा जाता है तो उसको कहेंगे व्यवहार ने। और जब जिस नए की उसका प्रयोजन क्या होता है, इकट्ठा सबको मिलकर एक कोई लक्षण कह दे कि वो सब हम कंसिडर करेंगे एक साथ, तो उसको कहेंगे संग्रह ने। नयगम नय की यहाँ बात नहीं है, वो आगे आने वाली है। तो ये नयगम, संग्रह और व्यवहार, ये तीनों ही द्रव्यार्थिक नए हैं। हाँ, उसका हमें वहाँ प्रयोजन क्या है, ज्ञानोपयोग लक्षणोपयोग दर्शनोपयोग बताकर सभी जीवों को हम इकट्ठा करना चाहते हैं या कि उपयोग के दो भेद बताना चाहते हैं, है ना। हम यदि हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन उपयोग है तो उपयोग के हम दो भेद किए, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग या शुद्ध उपयोग अशुद्ध उपयोग, तो हमारा प्रयोजन क्या है, उपयोग के भेद बताना है क्या, सभी जीवों को लक्षण बता के जीवों को इकट्ठा करना है, डिपेंड्स अपना प्रयोजन क्या है। नहीं तो सामान्य डिस्कशन हुआ वहाँ, तो हमने वो तो डिस्क्रिप्शन किया, इनका क्या लक्षण है, उनका क्या लक्षण है, ख्याल है ना। ये बातें आगे आएगी विस्तार से, अभी तो हम बेसिक बिल्कुल ज्यादा उसके डिटेल में नहीं जाते हुए। पहले तीन हमने क्या देखा, द्रव्यार्थिक ने है, अगले जो चार है उसको कहेंगे पर्यायार्थिक ने। पर्याय कौन सी पर्याय, तो द्रव्य हमेशा अपने वर्तमान पर्याय युक्त ही होता है। भूतकाल की पर्याय तो बीत गई, वर्तमान की अभी है ही नहीं है, तो द्रव्य हमेशा कोई ना कोई जो पर्याय उसकी विद्यमान है उसी को तो हम वर्तमान कहते हैं। तो वर्तमान पर्याय युक्त जो द्रव्य है, पहले जो हमने तीन नए देखे थे वहां पर्याय की चर्चा नहीं की, वो भूतकाल में कैसा था द्रव्य, भविष्यकाल में कैसा होगा उसकी चर्चा नहीं, बस जीव द्रव्य कहते ही सभी आ गए। उसकी कौन सी पर्याय चल रही है, भूत की हो गई उसकी बात कर रहे हैं कि भविष्य की, हम पर्याय की बात ही नहीं उठा रहे। अब यहाँ पर्याय की बात करेंगे, और वो भी कौन सी पर्याय, तो वर्तमान काल। तो उसमें हो सकता है वर्तमान काल, हमने देखा था वर्तमान काल बहुत लंबा भी हो सकता है और वर्तमान काल एक समय का भी हम कंसिडर, जैसे हम जिसको हम स्थूल रूप से कहते वर्तमान, यह हमारी वर्तमान 24 ही है, यह हमारे वर्तमान में हुंडाव सर्पिणी काल चल रहा है, मालूम है ना, हुंडाव सर्पिणी नाम सुना होगा, असंख्यात अवसर्पिणी जाने के बाद एक बार हुंडाव सर्पिणी आता है जो अत्यंत निकृष्ट काल समझा जाता है, और ऐसे काल में हम उत्कृष्ट ऐसा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, कोई महान पुण्य का योग हमारे उदय आ गया तो ये उत्कृष्ट बात हमें ऐसे निकृष्ट काल में मिल रही। तो ये जो वर्तमान हम करे हुंडाव सर्पिणी वर्तमान में चल रहा है, तो वो तो पूरा 10 कोड़ा कोड़ी सागर का हुंडाव सर्पिणी हम उसको वर्तमान कह रहे हैं। तो ये जो लिमिट है दोनों एंड की वर्तमान की, जो कुछ हम बताना चाहते हैं, तो वर्तमान को बताना यानी वर्तमान रुजु यानी सीधा सरल, रुजु शब्द पहले सुना होगा कहीं, नहीं मगर हाँ रुजु गति नाम सुना, विग्रह गति में जो सीधा गमन करता है उसको रुजु गति कहते हैं। और रुजु शब्द कहाँ आया था याद है, किसी को याद नहीं, रुजुमति विपुलमति मने परे ज्ञान के वेद है। रुजुमति यानी दूसरे सरल मन वाले के मन की बात जानना, और विपुलमति यानी जो कोई टेढ़ा मन वाला ऐसा कहते हैं, तो ये रुजु है ना सरल। तो यहाँ रुजु क्या बात चल रही है, रुजु सूत्र। रुजुता,
हाँ उसमें रुजुता का कुछ लेश नहीं।
आर्जव शब्द भी रुजुता से बना। आर्जव धर्म आपने सुना है दशलक्षण धर्म में, आर्जव धर्म वो रुजुता से आर्जव ये शब्द तैयार हुआ है। रुजु यानी सरल सीधा। इसको पढ़ेंगे फिर हम जाएंगे 13 पेज पर हम आए थे। तो ये तो जो सभी आगे जो नए ना, ऋजु सूत्र ने, फिर शब्द ने, समभिरूढ़ ने और एवं भूत ने, ये सभी ने वर्तमान को विषय करने वाले हैं। उसको हमें पर्यायार्थिक ने के ये भेद है। तो इतने भेद क्यों किए फिर? वर्तमान तो एक समय वाली हो गया, बड़ी वर्तमान की होगी तो उसमें ये डिफरेंस कैसा है? तो मैं अभी तो बिल्कुल शॉर्ट में बताती हूँ, इसमें फिर उसके डिटेल्स आएंगे। तो ऋजु सूत्र ने तो वर्तमान को विषय बना दिया। तो वो भी कोई स्टेटमेंट करेगा, उसका एकमात्र प्रयोजन क्या है? वर्तमान पर्याय सहित वाला वो द्रव्य बताना है। उसके आगे आगे जो नए है ना, वो जैसे हम फिल्टर्स लगाते हैं ना बीच में, वो चालनी से यही होगी तो आगे वाला परमिशन देगा। कैसे? शब्द नहीं कहेगा, व्याकरण की दृष्टि से इसमें कोई दोष है तो हम दो शब्द इकट्ठे नहीं कर सकते। यहाँ कोई एक अलग स्त्रीलिंगी वाला और पुल्लिंग शब्द एक साथ तुम आप जोड़ दो एक शब्द वाक्य में या उसको उसका समूह करो तो वो हमको मान्य नहीं है। संख्या में कोई डिफरेंस होगा, ये व्याकरण के बहुत नियम है, उसको भी बात आएगी। अब एक वचन अनेक वचन, या हम कहते ना फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन जो कुछ है वचन, जैसे मैं हम ये प्रथम पुरुष हुआ, तू तुम आप ये सब द्वितीय पुरुष हो गए, और तृतीय जो वह वगैरह ऐसे जो कहते हैं, तो उसमें अगर कोई गड़बड़ी होगी तो वो मान्य नहीं है शब्द नए वाले को। तो ये फिल्टर वहां लगा। उसके आगे का समभिरूढ़, तो शब्द नए वाला तो क्या है, तो वो तो बहुत सारे एकार्थी शब्द भी मान्य करेगा, पर वो अगला वाला जो समभिरूढ़ है उसको वो भी मान्य नहीं है। जैसे इंद्र जो है, इंद्र यानी ऐश्वर्य वाला जो इंद्र है, इंद्र का ही दूसरा एक नाम है पुरंदर। पुरंदर यानी पुर यानी नगर का जो नाश करने वाला है, और दूसरा एक शब्द उसी के लिए है शक्र। वो तीनों शब्द इंद्र के लिए है, परंतु वो समभिरूढ़ वाले को वो मान्य नहीं होगा। तो जो जैसा अर्थ होगा वो बात आएगी, तभी आपको ज्यादा खबर पड़ेगी उसमें।
यानी उसके वैभव के बारे में बोलना हो तो वहाँ पुरंदर नहीं कहना, वहाँ इंद्र ही कहना, उस समय उसको शक्र नहीं कहना। जैसा हम कृष्ण को देखते हैं तो उसको उसके माँ के बारे में बोलना हो तो फिर उसका नाम अलग होगा, वो पर्वत उठाता होगा तो उसको गिरधर कहेंगे। ऐसा जो क्रिया हो रही उस टाइप का उसका नाम वैलिड पकड़ा जाएगा। यानी समभिरूढ़ जो रूढ़ी में चलता है, ऐसा उस समय जो होगा वो नाम वहाँ देखना है हमें।
यानी अगले अगले नए
सूक्ष्म कर
अधिक ज्यादा प्यूरिफाइड है ऐसा कहो, इसलिए मैंने बोला फिल्टर लगाते आगे
आएगा। आगे
शक्यंती ऐसा कुछ
नहीं, शक्ति का अंतर है।
शक्र की बात आगे आएगी, वो डिटेल में सब ये उदाहरण वगैरह लेने वाले आगे होगा 86 पेज के आसपास कहीं। ये आगे आने वाली बात है, देखो। तो ये ख्याल में है ना। और आगे वाला एवं भूत, भले राजा हो मगर अभी पूजा करते हैं करता है तो हम उसको पुजारी कहेंगे, उसको राजा नहीं कहेंगे। जिस क्रिया से परिणत अभी वर्तमान में है उसको उसी नाम से बुलाएंगे, ये एवं भूत नए होगा। तो इसकी चर्चा अब आएगी। पहले द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, पहले तीन नए द्रव्यार्थिक है और अगले चार नए पर्यायार्थिक है। चारों ही नए वर्तमान पर्याय संबंधी बातें करते हैं, इतना हमने जान लिया। अभी हम आगे पढ़ेंगे। 13 नंबर पेज पर हम आए थे, नीचे विशेषार्थ लिखा नीचे वाला, उसके ऊपर की दो लाइन देखो, रजसूत्र वचन का विच्छेद रूप वर्तमान काल ही पर्यायार्थिक नय का मूल आधार है। अब इसकी भाषा छोड़ दो, पर्यायार्थिक नय का मूल आधार क्या है? वर्तमान काल। तो रजसूत्र वचन क्या है? तो रजसूत्र बताने वाला वो रजसूत्र वचन, यानी वर्तमान काल को बताने वाला वो रजसूत्र वचन उसको कहेंगे। और उसका विच्छेद यानी उसको जुदा करना, उसको सेपरेट करना, यानी रजसूत्र की जो लिमिटेशन है, अभी हमने देखा था वर्तमान हमारा हुंडावसर्पिणी 10 कोड़ा कोड़ी सागर का है, तो उसका वचन कहाँ से कहाँ तक चलेगा? पहले काल से अंत तक, छठे के अंत तक, ये हमारा वर्तमान होगा। उसको हमने सेपरेट किया, उसका विच्छेद किया यानी उसको सेपरेट किया, उसकी लिमिट्स बताई। तो उसकी लिमिट कितनी वर्तमान की जो हम बात कर रहे हैं, उसकी जो लिमिट है, तो उसको यह उस पर्यायार्थिक का मूल आधार है। हम जो स्थूल वर्तमान बताए तो उसकी लिमिट, या सूक्ष्म एक समय की पर्याय की बात कर रहे हैं तो वो एक समय वाली लिमिट, ये जिसका मूल आधार है उसको हम पर्यायार्थिक नहीं कहेंगे। और शब्दादिक नय, शब्दादिक यानी शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत, आगे वाले तीन नय शाखा उपशाखा रूप उसके उत्तरोत्तर सूक्ष्म भेद है। रजसूत्र नय से हमने वर्तमान पर्याय वाला पकड़ा और उसी को शब्दों के बारे में या उसके अर्थ के बारे में, उसकी जो कुछ वर्तमान क्रिया है, ऐसे जो आगे आगे वाले ज़्यादा शुद्ध शुद्ध कहो या ज़्यादा सूक्ष्म सूक्ष्म नय है, ऐसी इसमें चर्चा है। चारों ही नए वर्तमान समय संबंधी, वर्तमान पर्याय संबंधी बातें करते हैं, इतना ख्याल में लेना। यानी पर्यायार्थिक नए वर्तमान पर्याय को विषय बनाता है, विशेषार्थ वर्तमान समयवर्ती पर्याय को विषय करना रजसूत्र नए है। इसलिए जब तक द्रव्यगत भेदों की ही मुख्यता रहती है तब तक व्यवहार नहीं चलता है। पहले जो तीन नए हमने देखे थे वहां द्रव्यों की चर्चा थी, ये पुद्गल द्रव्य है कि जीव द्रव्य है, ये मुक्त है कि ये संसारी है, तो द्रव्यगत भेद थे वे। द्रव्य की ये कौन सी पर्याय है, वर्तमान है कि भूत है, उसकी चर्चा वहां नहीं थी। द्रव्य एज अ होल वहां लिया था, तो तब तक व्यवहार नए संबंधी बातें थी। और जब काल निमित्तक भेद प्रारंभ हो जाता है, काल निमित्तक भेद यानी वर्तमान पर्याय वाला द्रव्य हमने लिया भी, यानी वो काल निमित्तक भेद हुआ उसका, वर्तमान काल को अलग निकाला ना, उसके भूत भविष्य की पर्याय संबंधी हमने बात नहीं की, बस वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य लिया यहाँ, तभी से रजसूत्र नय का प्रारंभ होता है, यानी तब हम उसको रजसूत्र नय कहेंगे। शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत, इन तीन नयों का विषय भी वर्तमान पर्याय मात्र है, परंतु उनमें रुजुसूत्र विषय, रुजुसूत्र के विषयभूत अर्थ के वाचक शब्द, क्या कहना चाहते हैं? रुजुसूत्र ने का विषय कौन है? वो वर्तमान पर्याय। उसके अर्थ का वाचक यानी उसको बताने वाले जो शब्द है, वाचक यानी शब्द, और वाच्य यानी जो पदार्थ है उसको हम वाच्य कहते हैं। ये वाच्य है, क्लिप ये उसका वाचक है, शक्कर जो हमारे डब्बे में है वो वाच्य है। शक्कर शब्द से हम उसको, शक्कर कहो या शुगर कहो, तो ये उसका वाचक है। तो रुजुसूत्र नय बताने वाले जो शब्द है, जो शब्द हम रुजुसूत्र नय के लिए, रुजुसूत्र नय का जो विषय है उसको बताने वाले जो शब्द है, उसको जब हम यूज करेंगे, वापरेंगे उसको, तो उस शब्दों की मुख्यता से अर्थभेद इष्ट है। यानी उस शब्दों में जो बराबर व्याकरण की दृष्टि से बराबर शब्द आना चाहिए, तो वो उसको कहेंगे हम शब्द नय। उसमें भी विशिष्ट ही शब्द यूज करना, तो वो हो गए आगे वाला समभिरूढ़। उसमें भी अभी वर्तमान में वो है कि नहीं, वो कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो वो चलेगा आगे वाला नय। इसलिए आगे आगे वाले जो नय है, रुजुसूत्र के जो शब्द है उसी में फिर हम उसमें से सिलेक्टेड आगे वाले नए उसको स्वीकार करेगा, सभी शब्दों को स्वीकार नहीं करेगा। व्याकरण की दृष्टि से सही शब्द है उसी को स्वीकार करेगा, उसका अगला नए उसमें से भी फिर विशिष्ट शब्दों को चुनेगा। और एवं भूत नए बिल्कुल सिलेक्टेड, वर्तमान जो क्रिया हो रही है उसी शब्दों को स्वीकार करेगा, अन्य शब्दों को नहीं करेगा। तो क्या कहते हैं, उनमें रुजु सूत्र के विषयभूत अर्थ के वाचक शब्द उनकी मुख्यता से अर्थ भेद इष्ट है, इसलिए उनका विषय, उनका यानी आगे आगे जो नए है उनका जो विषय है वह रुजु सूत्र से सूक्ष्म, ये सूक्ष्म किसके लिए शब्द नए उससे सूक्ष्म है, और सूक्ष्म तर यानी ज्यादा सूक्ष्म, तरतम कहते ना गुड बेटर बेस्ट, वैसे सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम, तो शब्द नए सूक्ष्म होगा उससे, समभिरूढ़ नए वो सूक्ष्मतर होगा, और जो एवं भूत है वो सूक्ष्मतम होगा। अर्थात रुजु सूत्र के विषय में लिंग आदि से भेद करने वाला शब्द नए, यानी उसमें खाली पुल्लिंग पुल्लिंग एक साथ लेंगे वो चलेगा, एक साथ वो पुल्लिंग वाले स्त्रीलिंग वाले वो शब्द कुछ हो गए तो वो स्वीकार नहीं करेगा। फिर शब्द नय जिसको स्वीकार करता है, ऐसे शब्द नय से स्वीकृत लिंग और वचन वाले शब्द जो है उसमें व्युत्पत्ति भेद से अर्थभेद करने वाला समभिरूढ़ नय है। व्युत्पत्ति अर्थ नहीं है, अभी बता ना पुरंदर यानी पुर का नाश करने वाला वो पुरंदर, वो उसकी व्युत्पत्ति अर्थ होता है उसका, तो उसको स्वीकार करने वाला वो समभिरूढ़ नय है। और पर्याय शब्द को उस शब्द से ध्वनित होने वाले क्रिया काल में ही वाचक मानने वाला, ये तो पुरंदर उसने स्वीकार किया, परंतु क्या वो अभी पुर का नाश कर रहा है तो ही उसको पुरंदर कहेंगे? जो राजा का ऐश्वर्य महाराजा वहां सिंहासन पर विराजमान है तब हम वो राजा स्वीकार करेंगे उसको, और वो पूजा कर रहा है तो उसको हम पुजारी स्वीकार करेंगे, ये एवं भूत नहीं है। पुर यानी नगर, पुरंदर का नाम पुर का नाश करने, इस तरह ये शब्दाधिक नय उस रुजु सूत्र नय की शाखा उपशाखा है यह सिद्ध हो जाता है। अतएव रुजु सूत्र नय पर्यायार्थिक नय का मूल आधार माना गया है, ये मेन है, और आगे जो शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत है वो उसी के आगे आगे के सब डिविजन से। ये पेज 90 पर ये बातें आने वाली है, फिर 90 ये सभी बातें ना ये, हाँ नहीं ये समभिरूढ़ नहीं, अभी जो आपने इंद्र के बारे में पूछा 90 पेज पर लास्ट पैराग्राफ मिला, देखो शब्द भेद से जो नाना अर्थों में अभिरूढ़ होता है उसे समभिरूढ़ नहीं कहते हैं। अभी उसका उदाहरण देंगे तो समझेंगे, जैसे इंद्रनाथ अर्थात परम ऐश्वर्यशाली होने के कारण इंद्र कहते हैं, इंद्र का नाम इंद्र क्यों कहा, ऐश्वर्यवान है इसलिए। पुरदारनाथ अर्थात नगरों का विभाग, विनाश मैंने कहा था वो विभाग चाहिए, नगरों का विभाग करने वाला होने के कारण पुरंदर। और शकनाथ, ये आपका प्रश्न था ना शक्र क्यों कहते हैं, तो सामर्थ्य वाला होने के कारण शक्र। इंद्र के सामर्थ्य की कल्पना है आपको, पूरा जम्बू भी उल्टा करे, इतनी इतनी ताकत है उसके, इतना सामर्थ्य है, करता नहीं कभी, सामर्थ्य कितनी वो बताते हैं। देखो ये तीनों शब्द भिन्नार्थवाचक होने से इन्हें एकार्थवाची नहीं समझना चाहिए, यानी समभिरूढ़ नय एकार्थवाची शब्दों को स्वीकार नहीं करेगा, है ना वो इस नय की दृष्टि में पर्यायवाची शब्द नहीं होते, क्योंकि भिन्न पदों का एक पदार्थ में रहना स्वीकार कर लेने में विरोध आता है। वो बाकी आगे भी ये सभी नयों के बिल्कुल उदाहरण दे के समझाए विषय, यानी ये पूरा जो अभी हमने पढ़ा है वो फिर से दोबारा आने वाला है 86 पेज के बाद फिर दोबारा। ये सात हमने अभी जो पढ़ा नहीं था, उसको पढ़ेंगे 13 पेज पर। उसका अर्थ तो अभी अभी हमने पढ़ लिया। ये शुरू में पढ़ना चाहिए था, वो सात वाला, सातवा सातवीं गाथा कल पढ़ा था ये। हाँ ठीक ठीक, फिर अब आठवें पर चले जाएंगे। 14 पेज पर आठवीं गाथा पढ़ेंगे और फिर उसका अर्थ नीचे लिखा है सेकंड पैराग्राफ में, उसको पढ़ेंगे। उपचंति विअंतिय भावानियमेण पज्जवणयस दौवट्ठ्यस्य सौवम सदा अनुपन्नम विनट्ठम। देखो क्या कहते, उपचंति विअंतिय भावा, उत्पन्न होते और विनाश होते। अभी जो प्रवचन सार में शाम को चल रहे ना, उत्पाद और व्यय, नियमे न नियम से होते, किसमें पज्जवणयस्य, पर्यायार्थिक ने की अपेक्षा से उत्पन्न विनाश चलता है। और दौवट्ठ्यस्य सर्वम सदा अनुपमम अविनट्ठम, यानी द्रव्य की अपेक्षा देखेंगे तो हमेशा वो द्रव्य कैसा है, अनुत्पन्न है और अविनष्ट है, यानी क्या है, है वैसा कायम है। द्रव्यार्थिक ने क्या कहेगा, द्रव्य है वैसा कायम है। पर्यायार्थिक ने क्या कहेगा, वहां उत्पन्न और विनाश चल रहा है। ये नीचे लिखा है, हाँ हाँ, द्रव्य द्रव्य की बात चलेगी। पर्यायार्थिक ने की अपेक्षा पदार्थ नियम से उत्पन्न होते। देखो क्या है, नय की अपेक्षा से पदार्थ ही उत्पन्न होता है और पदार्थ ही नष्ट होता है, ऐसा कहा। अकेले पर्यायी उत्पन्न होती है, पर्यायी नष्ट होती है, ऐसा नहीं कहा, क्योंकि पर्याय कहाँ पर है, द्रव्य की अवस्था ही को तो पर्याय कहते हैं। ऐसा नहीं कि द्रव्य यहाँ बैठा और उसकी पर्याय कहीं घूम रही है और वो भी नष्ट हो गई है, क्या है ना। द्रव्य की जो वर्तमान अवस्था है उसी का तो नाम पर्याय है। द्रव्य किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी अवस्था में हमेशा रहता है। अब हमको सोना लेना है तो कैसे लेना चाहिए, कौन सी अवस्था में, कौन किसी न किसी अवस्था में हो ना, कि बिना अवस्था का होगा, बिना फॉर्म का कोई सोना होगा, भले वो बिस्किट हो, हार हो, चेन हो, कुछ न कुछ, मगर वो अवस्था के बिना हो ही नहीं सकता, फॉर्म के बिना हो ही नहीं सकता। वैसे द्रव्य हमेशा किसी न किसी अवस्था में होगा, तो उसको हम पर्याय कहते हैं। तो वो जो पर्याय है, अवस्था है, वो एक अवस्था नष्ट होकर दूसरी अवस्था उत्पन्न होती है, वो नष्ट होकर तीसरी होती है, हर समय वो अवस्था बदलती है। तो वो अवस्था की दृष्टि से हम द्रव्य को देखेंगे तो यहाँ पदार्थ ही उत्पन्न और विनष्ट होता है सका। परंतु पदार्थ उत्पन्न होता है विनष्ट होता है, उसके पहले क्या शब्द लिया, अपेक्षा बता दी, पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से। वो अपेक्षा मत लगा और खाली द्रव्य विनष्ट हो जाता है कहेंगे तो सबका सब नाश ही हो जाएगा, ख्याल है ना। तो पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा पदार्थ नियम से उत्पन्न होते हैं और नाश को प्राप्त होते हैं, यानी कोई कोई पदार्थ उत्पन्न होता होगा और नाश को होता होगा, बाकी कोई स्टेडी होते होंगे, ऐसा नहीं, प्रत्येक पदार्थ, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में प्रति क्षण यानी प्रति समय नवीन नवीन पर्याय उत्पन्न होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद, और पूर्व पूर्व पर्यायों का नाश होता है, उसको हम व्यय कहते हैं। किंतु द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा, अभी अपेक्षा बदल गई हमारी, तो द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से उत्पाद कितने समय के बाद होगा, हाँ अश्विन भाई, हाँ होगा ही नहीं, क्योंकि हमारी अपेक्षा बदल गई ना अभी। तो द्रव्यार्थिक नय की, द्रव्यार्थिक हम तभी कहते, वो सामान्य को हमने ले लिया, विशेष यानी पर्यायों में उत्पाद विनाश अभी हमने पहले देखा था, अभी हमने सामान्य अंश को ले लिया। द्रव्य को हम सामान्य अंश के रूप में देख रहे हैं, पहले हम द्रव्य को पर्याय के रूप में देख रहे थे, अभी द्रव्य को सामान्य अंश रूप से देख रहे, तो उसमें हमें कोई पर्याय दिखती नहीं है, तो उत्पाद और विनाश कहाँ दिखेगा, ख्याल है ना। तो हमें तो उसका वो ध्रुव सोना ही दिख रहा है। आपके घर में कितना सोना है पूछेंगे, तो क्या कंगन और हार और उसकी डिजाइन और कितना अच्छा है वो ख्याल में आता है, कि सोना है सच, कितने ग्राम उसका वजन ख्याल में आता है ना। वैसे द्रव्यार्थिक ने की अपेक्षा वे यानी कौन, द्रव्य सदा अनुत्पन्न और अविनष्ट स्वभाव वाले हैं, सभी द्रव्यों की बात है, अकेले जीव की नहीं है, अकेले पुद्गल की नहीं है। उनका न तो कभी उत्पाद होता है और न कभी नाश होता है। वे यानी सभी द्रव्य सदा काल स्थिति स्वभाव रहते हैं। कौन सी अपेक्षा लगाई थी हमने? द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से। वहां कोई उत्पाद व्यय होता ही नहीं है, ही लगाया। अरे द्रव्य में उत्पाद नहीं होता? पहले अपेक्षा, हमने अपेक्षा से बात की है। जैनी कभी भी बिना अपेक्षा की बात नहीं होती है। और यदि अपेक्षा यहाँ समझो उसको ब्रैकेट में भी रखा या बताया भी नहीं, तो भी ये जैन आचार्यों ने लिखा है तो अपेक्षा वहां होती ही है। क्योंकि हर बार अपेक्षा नहीं लिखेंगे, क्योंकि शिष्य समझदार होते हैं तो हर बार उनको ऐसा नहीं बताना पड़ता कि वो तो द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है। नित्यानित्य है कह देते हैं तो शिष्य समझ जाते हैं, क्योंकि वो जानकार है ना, ख्याल है ना। ये अपेक्षा सहित, अपेक्षा किसी अपेक्षा कहना है तो स्यात कह देंगे। अब यहाँ तो बता दिया कि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से द्रव्य हमेशा कायम रहता है, तो शॉर्ट में लिखना है तो क्या लिखेंगे? स्यात नित्य है। स्यात में वो कौन सी अपेक्षा, वो भी गर्भित आ गया, क्योंकि आप सभी अपेक्षाओं से बिल्कुल फैमिलियर हो। तो आचार्य क्या कहेंगे? स्यात नित्य है, यानी समझना कि कौन सी अपेक्षा से द्रव्य नित्य है। स्यात शब्द में वो आ गया, उसकी अपेक्षा आ गई, इसीलिए तो स्यादवाद कहा है। स्यात रूप से कथन आता है जिनवानी में, जिनवानी का सभी कथन वो स्यादवाद रूप है। हम मंगलाचरण में कहते थे ना, स्यात पद मुद्रित अहित हर, ये स्यात पद है, अपेक्षा बता देना, इसी का विशेषार्थ करेंगे। देखो नीचे उत्पाद दो प्रकार का माना गया है, उसी प्रकार व्यय भी, एक स्वनिमित्त और दूसरा परनिमित्त। इसका खुलासा इस प्रकार समझना चाहिए कि प्रत्येक द्रव्य में आगम प्रमाण से, देखो ये प्रमाण बता दिया, कोई भी स्टेटमेंट किया कि यह द्रव्य में एक अगुरु लघु नाम का गुण है, उसमें क्या होता है, वो षड्गुण हानि वृद्धि वाले अविभाग प्रतिच्छेदों में चेंज होता है, किसने कहा, किसने देखा, तो वो प्रमाण बताया, आगम प्रमाण। आगम प्रमाण यानी जो सर्वज्ञ भगवान ने जो दिव्य ध्वनि में जो बात आई थी उसके अनुसार गणधरों ने जो आगम की रचना की थी, उस आगम में ये बात है। केवल ज्ञानी ने जो प्रत्यक्ष जाना, जानकर बताया था, वह ये बात है। इसको प्रमाण स्टैंडर्ड माना जाता है, बिल्कुल सत्य बात है, ये प्रमाण वगैरह के भेद आएगी आगे। तो ये आगम प्रमाण से अगुरु लघु गुण के अनंत अविभाग प्रतिच्छेद माने गए हैं। प्रत्येक जो गुण है उसकी जो पर्याय होती है उसमें उस गुण की जो शक्ति है वो प्रकट है। वो शक्ति कैसे मापना? जैसे हम दूध लेने जाते हैं तो वो लीटर में या मिली लीटर में या जो कुछ है, कोई प्रवाही पदार्थ हम लीटर में मापेंगे, और कोई हमको कितना लंबा कपड़ा है तो सेंटीमीटर और मीटर में नापेंगे, है ना? वजन कितना है तो किलो में, ग्राम में मापेंगे। तो ऐसे ये शक्ति जो पर्याय में जो शक्ति होती है, प्रकट अभी हुई है, वो शक्ति कैसे नापना, तो उसको कहते हैं अविभाग प्रतिच्छेद। इट्स अ यूनिट ऑफ पावर कहो या शक्ति कहो, हर एक गुण की। ज्ञान के अपने अविभाग प्रतिच्छेद है, दर्शन के अपने अविभाग प्रतिच्छेद है, श्रद्धा के अपने अविभाग प्रतिच्छेद है। अभी वितरागता भी कितनी हुई, विशुद्धि कितनी हुई, तो वहाँ वो अविभाग प्रतिच्छेदों में बात करेंगे। कर्म भी जो हमें फल देता है, इसके निमित्त की भाषा में, ये ज्ञानावरण कर्म है, तो उसमें कितनी पावर है, कितनी शक्ति है, तो उसके अविभाग प्रतिच्छेदों में बात करेंगे। ऐसे यहाँ कौन सी की बात चल रही है? अगुरु लघु नाम का जो गुण है, अगुरु और अलघु द्रव्य को बड़ा भी नहीं होने देता और छोटा भी नहीं, उसका जो कोई रेंज है, उसकी जो लिमिट है वो कायम रहता है। तो उसमें इसीलिए अगुरु लघु शब्द तैयार हुआ। हाँ, अलघु मिलकर अगुरु लघु हुआ। अबद्ध स्पृष्ट समय सार में आया ना, उसका क्या अर्थ है?
अनादि निधन,
अनादि निधन, अनादि अनिधन। हाँ, अबद्ध स्पृष्ट, अबद्ध और अस्पृष्ट, ना बंधा हुआ है ना स्पर्शा हुआ है। अच्छा समय सार में आया ना चौधरी का, हाँ बिल्कुल उसमें आया है जीव का, हाँ शुद्धात्मा का वर्णन है वहाँ, शुद्धात्मा है। अभी हमने जो बात की ना द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा, देखो तो बंधा है क्या दूसरे से, क्या हुआ कितने कर्मों से बंधा है, तो वहाँ वो हमको अभेद दिखता है, दूसरा द्रव्य वहाँ दिखता है, उस नजर में नहीं दिखता। नए का अर्थ क्या होता है, जिस दृष्टि से हम देख रहे हैं उस दृष्टि में हम अन्य कोई उसमें दिखाई नहीं देता। ये सीता की बात आपने बहुत बार बताई ना, अभी लव कुश सीता को देख रहे हैं उसको क्या क्या नजर आएगा, 100% माँ ही दिखेगी उसको। तो नजर कौन सी है, वो लव की नजर है, तो वो हम उसका वो नहीं कहेंगे। जैसे वो शुद्धात्मा की दृष्टि से हम देख रहे हैं त्रिकाली ध्रुव जो है, तो उसमें हम वो बंधा हुआ और स्पर्शा हुआ वो कोई बात है ही नहीं उसमें, इसलिए अबद्ध स्पृष्ट कहे हूँ। ये यहाँ क्या बात हो रही है, अगुरु लघु, तो अगुरु लघु के जो इतने अनंतांश जो कुछ अविभाग प्रतिच्छेद माने गए हैं उसमें क्या होता है, हमेशा षडगुण हानि और षडगुण वृद्धि रूप से निरंतर प्रवर्तमान रहते हैं, प्रवर्तमान यानी पलटते रहते हैं। उसकी जो परिणमन चलता है, अगुरु लघु का परिणमन चलता है, उसके पर्याय में जो अविभाग प्रतिच्छेद है उसमें वो षट स्थान पतित जो वृद्धि हानि होती है ना, कौन सी आपने शायद सुना होगा, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुणा वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि। नाम तो छह है परंतु वो दो दो के बीच में असंख्यात असंख्यात अलग अलग भेद होते हैं उसके, यानी एक बार वो षटस्थान वृद्धि हानि होती है तो उसमें असंख्यात 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 बार वेरिएशंस जो अलग अलग स्थान होते हैं अग्र लघु गुण में या प्रत्येक गुण में, या ऐसा होता है प्रत्येक गुण में होते तो उसके लिए हम निमित्त रूप से अग्र लघु गुण को पकड़ते कि द्रव्य में यह अग्र लघुत्व शक्ति ऐसी है कि उसके कारण प्रत्येक गुण की जो वर्तमान पर्याय है उसमें यह षट्स्थान पतित वृद्धि हानि होती रहती है प्रत्येक समय। तो यहाँ क्या लिखा, ये जो अग्र लघु गुण में जो अविभाग प्रतिच्छेद है उसमें जो षट्स्थान पतित वृद्धि हानि होती रहती है ना, उसमें कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है प्रत्येक पर्याय में, तो वो जो है तो वो स्वनिमित्त का उत्पाद वे कहेंगे। देखो लिखा है ना, उसमें जो वो निरंतर प्रवर्तमान रहता है इसलिए इनके आधार से, इनके आधार से ने अगुरु लघु गुण में जो षट्स्थान पतित वृद्धि हानि होती है उसके आधार से प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद और व्यय हुआ करता है। ज्ञान की पर्याय प्रकृति, तो अभी भी ज्ञान है, दूसरे समय में भी ज्ञान है, तीसरे समय में भी ज्ञान है, परंतु उसमें जो कुछ वेरिएशन चल रहा है वो अगुरु लघु गुण के निमित्त से वहां हो रहा है, तो वो स्वनिमित्तक उत्पाद व्यय कहलाएगा। अभी केवल ज्ञानी हो गए, अभी हमारे आपके तो ज्ञान में वेरिएशन होता है, वो तो क्षोभम ज्ञानियों में तो होता ही रहता है। अब केवल ज्ञान होने के बाद उसमें षट्स्थान पति तो वृद्धि हानि होगी कि नहीं होगी, हाँ भाई हाँ बिल्कुल होगी। मिथ्या तो अवस्था में से, ये तो इसको स्वभाव परिणमन कहा है, अगुरु लघु गुण का जो परिणाम है ना वो परिणमन, वो स्वभाव है। ये श्रद्धा चारित्र ज्ञान में भले विभाव हो पर अनादि से इसमें वो स्वभाव परिणमन हो रहा है, स्वभाव अर्थ पर्याय कहा उसको। ये जो वेरिएशन है उसको स्वनिमित्तक उत्पाद वे कहा, अभी आगे कहेंगे। देखो उसी प्रकार परनिमित्त से भी द्रव्य में उत्पाद और व्यय का व्यवहार किया जाता है, पर के साथ जो होगा उसको व्यवहार कहेंगे, तो वो परनिमित्तक है। कैसे, जैसे स्वर्णकार ने कड़े से कुंडल बनाया, यानी सोनी ने सोना में से पहले कड़ा था उसका कुंडल बनाया, यहाँ पर स्वर्णकार के निमित्त से कड़े रूप सोने की पर्याय नष्ट होकर कुंडल रूप पर्याय का उत्पाद हुआ और इसमें स्वर्णकार निमित्त है। जैसे घड़ा बना तो कुम्हार निमित्त कहते ना, कुम्हार ने घड़ा बनाया तो ये निमित्त हुआ उसका, निमित्त कुछ करता नहीं है परंतु वो पर निमित्त से वहां कुछ द्रव्य में जो कार्य हुआ है पहले स्वनिमित्त से कौन सा हुआ? वह अगुरु लघु गुण के कारण जो कुछ वेरिएशन होता था वो स्वनिमित्तक उत्पाद व्यय कहलाता था। अब परनिमित्तक उत्पाद व्यय में अन्य जो द्रव्य है वो उसमें निमित्त है। परनिमित्त कहा ना, पर कुछ कार्य में नहीं करता है परंतु पर का निमित्त होता है। निमित्त की उपस्थिति अवश्य होती है। जब जब कोई भी कार्य होता है तो सामने निमित्त नाम का अन्य कोई द्रव्य की पर्याय वहां उपस्थित रहती है। वो कुछ कार्य में कुछ नहीं करती, हेल्प मदद असर उसका कुछ उतल पुतल कुछ नहीं करती है। तो ये परनिमित्तक जो उत्पाद वह है उसको समझना। अब कोई कहेंगे कि हाँ देखो क्या कहना चाहते हैं, अभी स्वनिमित्त की बात ख्याल में आए, वो तो द्रव्य की अंगभूत शक्ति है कि उसमें ही उत्पाद व्यय। उत्पाद व्यय किसके कारण होता है, क्या पर के कारण होता है कि अपने कारण होता है?
हाँ। इनका ऐसा प्रश्न है कि यहाँ जो लिखा गया है कि स्वर्णकार ने कुंडल से कुंडल बनाया, हाँ, इस तरह से क्या कहते हैं पर निमित्त उत्पाद व्यय समझ नहीं।
हाँ, व्यवहार किया जाता उसको है,
व्यवहार किया जाता है, व्यवहार यह कथन की पद्धति है, व्यवहार किया जाता है यानी यह व्यवहार से कहा जाता है, इतना ही लेना।
ये उपचार है, उसके कारण हुआ ये उपचार है।
देखो नए जो होते हैं ना वो कथन पद्धति है, वस्तु में निश्चय या व्यवहार या ये नहीं होता है। ये जो व्यवहार की जो आपके दिमाग में बात चल रही ना, यानी व्यवहार से तो वो बनाता है ना, ऐसा कहने में आता है कि स्वर्णकार ने अलंकार बनाए, कोई मोची या दर्जी तो नहीं बनाएगा, उचित निमित्त तो स्वर्णकार ही होगा, उसने बनाया ऐसा कहने में आता है। इसलिए उन्होंने उत्पाद व्यय के दो कारण बताए ना, एक स्वनिमित्तक और एक परनिमित्तक। तो व्यवहार किया जाता है यानी व्यवहार से इस तरह कहा जाता है,
यानी ये जो उत्पाद होना व्यय होना और ध्रुव रूप से रहना ये द्रव्य का अनादि अनंत स्वभाव है, बराबर। प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है, वो उसके अपने से होता है, नहीं समझे? प्रत्येक समय में नवी पर्याय उत्पन्न होना, पहले पूर्व समय व्यय होना और द्रव्य हमेशा कायम रहना, इसको कहते उत्पाद व्यय द्रव्यता। तो ये द्रव्य का स्वभाव है कि नहीं है? स्वभाव है। तो द्रव्य का स्वभाव है नहीं, वो अपने से ही उत्पाद व्यय कर रहा है, बराबर। होता तो अपने से ही है, परंतु जब होता है तब सामने कोई निमित्त वहां उपस्थित रहता है। वो जो निमित्त वाला जो कार्य है वो अपना उत्पाद व्यय ध्रुव कर रहा है कि नहीं कर रहा, ख्याल आता है ना? तो उसका जो कुछ विशिष्ट पर्याय है वो हमारे कार्य में अनुकूल जैसी लगती है, इसलिए उस पर आरोप किया जाता है कि इसके कारण ये हुआ। उत्पाद हमेशा, अभी आपकी जो ज्ञान पर्याय बड़ी, इस शास्त्र संबंधी ज्ञान नहीं था, वो अभी नया उत्पाद हुआ। पूर्व का अज्ञान का व्यय हुआ, ज्ञान का उत्पाद हुआ, तो इसमें कौन कारण है? स्वभाव है ना, ज्ञान स्वभाव है, उसमें ही ये उत्पाद व्यय और ध्रुवता। ज्ञान कायम है, ज्ञान 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 तो कायम है आपका, फिर भी अज्ञान का नाश और ज्ञान की उत्पत्ति हुई है, तो ये किससे हुई? अपने से हुई। ये हरेक जीव का स्वभाव में से ही वो उत्पाद हुआ है। तब सामने कोई पुस्तक निमित्त है, वो धवला तो लिखा था 800 साल में कहीं है, और आज हम उसको पढ़ रहे। तो ये जो वीरसेन आचार्य हमें निमित्त हुए है ना, तो ये परनिमित्त के कहा जाएगा, ये उपचार है, ये व्यवहार है। और लौकिक जो हमारा एक दूसरे के साथ जो बोलना है उसमें ये व्यवहार की भाषा होती है। आचार्यों को ऐसा नहीं जाके हम सुनाएंगे आपने क्या किया, ये तो हमने अपने ज्ञान के बारे, ऐसा नहीं होता। ऐसा कभी होता ही नहीं कभी नहीं, निमित्त होता है। हाँ, ये तो हमारी मूलभूत मिस्टेक है ये, क्योंकि हमें क्या, हमें निमित्त ही दिखाई देते हैं अंतर्भूत जो अंगभूत जो उपादान की शक्ति है वो ख्याल में नहीं आती है, बराबर ना? क्योंकि मिट्टी में वो घड़ा बनने की ताकत है वो हमारे दृष्टि में नहीं होती, हमें तो कुम्हार ही दिख रहा है। परंतु यदि कुम्हार में इतनी ताकत है तो रेती में से भी घड़ा बनाना चाहिए।
देखो महेंद्र भाई, महेंद्र भाई आपका ये जो कहना है ना कि वैसे वर्षा हो सकता है, यानी वहाँ उन्होंने लिखा इसलिए हमारे ज्ञान में आज 1200 साल के बाद हमारे ज्ञान में ये परिणमन हुआ, ये जो बात है ना, तो ये तो अन्य मति की मान्यता है। इसका अर्थ ये हो गया, जिनेन्द्र भगवान ने ये बताया कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, उसके परिणमन में पर द्रव्य की कोई रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। अगर हम ऐसा मानते हैं कि शास्त्र के कारण मुझे ज्ञान हो रहा है जो उन्होंने लिखा था, तो क्या मेरा ज्ञान इतना पराधीन है कि मुझे भी केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी किसी के पास भीख मांगनी पड़ी? ख्याल में है ना? तो हमने प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता को ही तोड़ दिया, तो हमने जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया। जिनेन्द्र भगवान बताते कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है और प्रत्येक में उत्पाद व्यय ध्रुवता आदि जो है वो कायम है, तो स्वभाव होगा वो कब निकल जाएगा? तीनों काल स्वभाव रहेगा। तो हम यही, हमारी दृष्टि ही गलत है। हम तो ज्ञेय से ज्ञान होता है ऐसा मानते हैं, यहाँ तो ज्ञान ज्ञान से होता है। ज्ञान का जो परिणमन है वह ज्ञान का परिणमन अपने स्वयं से होगा, श्रद्धा गुण से भी नहीं होगा और न चारित्र गुण से भी होगा, इतनी स्वतंत्रता है। ख्याल में है ना? ये तो बिल्कुल, मतलब ये मान्यता अनादिकाल से ऐसी ऊंधी ही चल रही है, इसलिए हमें वस्तु स्वरूप सही रूप से ख्याल में नहीं आता है। बात बैठ गई?
हाँ। ये अपना मूलभूत सिद्धांत है, कोई भी द्रव्य की कोई भी पर्याय होती है उसमें 5 समवाय लगते हैं, तो मूल में मूल वहाँ स्वभाव है उस जीव, निमित्त होता है वहाँ, पर निमित्त से कुछ नहीं होता है। द्रव्य में ही ऐसी शक्ति है कि उस समय उस पर्याय रूप परिणमन करे, तो द्रव्य में अनादि अनंत जो पर्यायों का क्रम है, जो हो चुका है, जो अभी है और जो भविष्य में होने वाला है, वो निश्चित है, वो द्रव्य की अपनी अंगभूत शक्ति से उत्पन्न होने वाला है। अभी मान लो ये 6 द्रव्य अपने आप परिणमन कर रहे हैं, तो विशिष्ट समय में 6ों का कोई ना कोई परिणमन है, तो 6 में से पहले का और 5वें का परिणमन हमको को ऐसा लगता है कि नहीं, इसका और इसका परिणमन इसमें कुछ सहायभूत दिख रहा है, तो हम उस पर आरोप करते ये निमित्त है। प्रत्येक द्रव्य ही अपना अपना परिणमन कर रहा है, यदि ऐसी स्वतंत्रता नहीं होती तो निमित्त के लिए हमको रुकना पड़ता। निमित्त से कार्य होता है तो निमित्त को ढूंढने में ही हमारा सारा बर्बाद हो जाता और आकुलता, कितनी महान आकुलता हो जाती है ना। फिर वो निमित्त उसको ढूंढने के लिए और निमित्त, वो निमित्त का कार्य करने के लिए और तीसरा निमित्त। गुरु तो हमने निमित्त करके गुरु को तो ढूंढ लिया, मगर अभी वो गुरु मौन लेके बैठा है, हाँ, तो उसको बोलता करने के लिए और कोई निमित्त चाहिए दूसरा। ख्याल है ना? ये निमित्त का निमित्त ऐसा पूरा ढूंढना पड़ेगा तो अनंत पराधीनता हो जाएगी। सामने पेन है इसलिए मुझे ज्ञान होता है, ये मान्यता झूठी है, क्योंकि यहाँ जो अवस्था होती है मेरे ज्ञान की अवस्था मेरे से होती है। सामने है इसलिए अगर ज्ञान होता है मानेंगे तो सबको ही होना चाहिए। ख्याल आता है ना? ये तो निमित्त के बारे में बहुत ऐसी है, उसके सारे सिद्धांत अभी आपने वो तो निमित्त उपादान वगैरह आपने पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ना फिर दोबारा, क्योंकि लौकिक तो सबकी मान्यता ऐसी है और लोगों को सिखाने से वो सुनेंगे नहीं। नहीं होता, कभी नहीं होता। हाँ, उपादान से ही 100% कार्य होता है। निमित्त की उपस्थिति है, बिल्कुल 100% उपस्थिति है, परंतु कार्य 0, उसके कारण कार्य नहीं होता। अब आगे बढ़ेंगे, ये परनिमित्त की बात आ गई ना यहाँ, ये पर पर आरोप आया है वहां, उत्पाद व्यय पर के कारण हुआ ये कहा, परंतु पर के कारण ये कौन सा कारण? निमित्त कारण, निमित्त है, यानी पर की वहां उपस्थिति है इतना ही बताना है। उसके कारण यहाँ उत्पाद व्यय हुआ ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसी प्रकार अब कोई कहे, मिला बीच में ही है, आकाश आदि निष्क्रिय द्रव्यों में, आकाश द्रव्य तो निष्क्रिय है, उसमें परनिमित्त से क्या डिफरेंस पड़ेगा, तो उसका उत्पाद कैसे होगा उसकी बात बताते। उसमें भी स्वपरनिमित्त उत्पाद व्यय, यानी उसमें भी स्वनिमित्त उत्पाद व्यय है और उसमें भी परनिमित्त उत्पाद व्यय है, आकाश द्रव्य में भी कैसे, देखो, क्योंकि आकाश आदि निष्क्रिय द्रव्य, आकाश आदि में किस किस को लेना, हाँ अश्विन भाई ख्याल है, आकाश आदि निष्क्रिय द्रव्य, क्रिया वाले द्रव्य कौन से हैं, जीव और पुद्गल, क्रिया होती है ना उसमें, प्रदेशों का जो कुछ पलटना होता है या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना रूप जो क्रिया चलती है उसको क्रिया कहते हैं। क्रियावती शक्ति किसमें किसमें है, जीव और पुद्गल में, और अन्य द्रव्य कैसे है, निष्क्रिय है, परिणमन रहित है, ऐसा नहीं कहा, क्या कहा, निष्क्रिय है, निष्क्रिय उनमें परिणमन होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि उसमें भी वस्तुत्व गुण है, द्रव्यत्व गुण है, तो निरंतर परिणमन उनमें भी होगा। तो ये जो आकाश आदि निष्क्रिय द्रव्य अभी कौन कौन से बताओ, हाँ हाँ, धर्म अधर्म आकाश और काल, ये चार द्रव्य निष्क्रिय है। तो उसमें क्या होता है, आकाश आदि निष्क्रिय द्रव्य दूसरे पदार्थों के अवगाहन गति आदि में कारण पड़ते हैं, यानी वे द्रव्य अन्य द्रव्यों को निमित्त है कि नहीं, आकाश द्रव्य अवगाहन में निमित्त है, वो जीव पुद्गल धर्म धर्म काल वगैरह सबको अवगाहना देता है, धर्म द्रव्य गति में ही निमित्त है, अधर्म द्रव्य गतिपूर्वक स्थिति में निमित्त है, काल द्रव्य परिणमन में निमित्त है, ऐसी ऐसी बातें जो है। तो ये जो आकाश आदि जो चार द्रव्य है निष्क्रिय द्रव्य है वो दूसरे पदार्थों में निमित्त पड़ते हैं, और अवगाहन गति आदि में निरंतर भेद दिखाई देता है। तो पहले तो जीव द्रव्य बैठा था, एक जगह बैठा था उसको अवगाहन दिया, फिर जीव द्रव्य गमन कर रहा था उसको भी अवगाहन दिया, तो वो स्थिर द्रव्य को दिया और गति वाले द्रव्य को दिया, उसमें कुछ फर्क पड़ा ना, ये आकाश द्रव्य में उत्पाद व्यय हुआ परनिमित्त से। देखो फिर पढ़ेंगे इसकी, इसलिए अवगाहन और गति आदि के कारण भी भिन्न, देखो अवगाहन और गति आदि में भेद दिखाई देता है, इसलिए अवगाहन गति आदि के कारण भी भिन्न होने चाहिए। स्थित वस्तु के अवगाहन में जो आकाश कारण है उससे भिन्न दूसरा ही आकाश, आकाश तो एक ही है परंतु अभी जो उसके लिए निमित्त है हम उस दूसरा आकाश कहेंगे, दूसरे प्रदेश कहेंगे आकाश, ख्याल है ना, दूसरा ही आकाश क्रिया परिणत वस्तु के अवगाहन में कारण है। अभी धर्म द्रव्य एक साथ कितने ही द्रव्यों को गति में कारण हो रहा है, कोई ट्रेन चल रही है, कोई विमान चल रहा है, कोई आदमी चल रहा है ना, ये जो कोई जीव है और पुद्गल है सबको गति में निमित्त हो रहा है, तो उसके भेद से वो धर्म द्रव्य में भी हम भेद कहेंगे। इस तरह अवगाह्यमान वस्तु के भेद से आकाश में भेद सिद्ध होता है। अवगाह्यमान यानी जिसको अवगाहना दी है वो अवगाह्यमान, तो किसको अवगाहना दी है, उस वस्तु में जो भेद है उस भेद के कारण हम आकाश में भी वो भेद कहेंगे, उपचार है ये, परंतु उसमें भी हम भेद डाल सकते हैं। हमें मालूम ही है आकाश के दो भेद तो हमने कर ही डाले हैं, कौन से दो, लोकाकाश और अलोकाकाश, क्यों किए है, क्योंकि जहां उसने अन्य पांच द्रव्यों को अवगाहना दी है उसका नाम हमने लोकाकाश रखा और दूसरे को अलोकाकाश कहा। उस तरह से अभी उसमें भी किसको किसको उसने जगह दी, उसकी अपेक्षा से उसी के उतने ही प्रदेशों के अलग अलग नाम गिनाएंगे हम उसको। लोकाकाश में ही वो अन्य द्रव्यों को अवगाहना दे रहा है तो कहीं जीव को दिया, जीव में भी कोई स्थिर है, कोई घूम रहा है, कोई क्रियाशील है और कोई स्थित है, तो उसकी अपेक्षा से आकाश के भेद कहेंगे। और इसलिए आकाश में परनिमित्त से भी उत्पाद व्यय का व्यवहार किया जाता है। ये फिर शब्द आया व्यवहार किया, अब ये व्यवहार ने आरोप किया, उपचार किया। इसी प्रकार धर्माधिक द्रव्यों में भी, यानी द्रव्य धर्म द्रव्य में वो गति संबंधी उपचार करेंगे, किसको गति में निमित्त हुआ उसके लिए। तो धर्माधिक में धर्म अधर्म और काल समझ लेना, परनिमित्त से उत्पाद और व्यय समझ लेना चाहिए। इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा पदार्थ उत्पन्न भी होते हैं और नाश को भी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अनंत काल से, यानी पदार्थ ही नाश को और उत्पन्न, पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा लगाई ना पहले, पदार्थों का उत्पन्न होना और विनाश होना चल रहा है कब से, अनादि काल से। तो अनंत काल से अनंत पर्याय परिणत होते रहने पर भी, यानी अनंत काल बीत चुका, अभी तक भूत काल में अनंत काल बीत गया और इतनी अलग अलग पर्याय धारण करने पर भी द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता, ख्याल है ना, ये उसकी ध्रुवता है। अनेक अलग अलग पर्याय धारण किए, अलग अलग पर्याय का उत्पन्न भी हुआ नाश भी हुआ, उत्पन्न हुआ भी नाश भी हुआ, फिर भी द्रव्य तो हमेशा कायम जैसे के वैसा कायम रहा। और न एक द्रव्य के गुण धर्म बदल कर कभी दूसरे द्रव्य रूप ही हो जाते हैं, एक द्रव्य कभी दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। अतएव द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा पदार्थ सर्वदा स्थिति स्वभाव है, ख्याल है ना, क्योंकि वहां हमने अपेक्षा कौन सी की थी, वो द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा। पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा हर समय उत्पन्न विनाश चलता रहता है और द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा इतने अनंत बार उत्पाद और व्यय होते हुए भी द्रव्य कायम 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 है, वैसा का वैसा है। हाँ, स्थिति स्वभाव ने ध्रुव स्वभाव, जैसा है वैसा। हमने पहले अवस्थित शब्द सुना था ना, अवस्थित यानी जैसा है वैसा रहता है, उसको स्थिति स्वभाव यहाँ कहा। अब 15 पेज पर आते हैं। हाँ, षटगुणी हानि वृद्धि जो है केवल ज्ञान में भी, प्रत्येक पर्याय में, वही तो वहाँ का उत्पाद वे है ना, हर समय की पर्याय अलग अलग है और उसमें भी वो षटस्थान पतित हानि वृद्धि होती रहती है। हाँ, बाद में भी
हाँ? देखो बात ऐसी, आपका प्रश्न ऐसा है कि क्या केवल ज्ञान में भी षटगुण हानि वृद्धि होती है क्या। मैं आपसे पूछता हूँ, ये अगुरु लुघुत्व नाम का जो गुण है वो वहाँ से वहाँ रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा ना, तो रहेगा तो उसका परिणमन होगा कि नहीं, तो उसका परिणमन होगा तो उसके निमित्त से केवल ज्ञान में भी यह षटगुणी हानि वृद्धि तो होगी ही होगी। आपको ऐसा नहीं समझना कि हानि हो गई, यार एक समय में हो रहे ये 6 और 6 12 प्रकार,
वो हानि होगी तो भी केवल ज्ञान रहता है कि नहीं रहता? केवल ज्ञान के अनंत वे भाग में सभी पदार्थ जाने में आते हैं।
6 प्रकार से हानि हो रही, 6 प्रकार से वृद्धि हो रही, वो भी एक समय में, और ये जानने रूप जो केवल ज्ञान है वो कैसा होगा ये तो समझो, उसमें कोई कम जात बेसी होने वाला नहीं, वो है तो इतना ही रहेगा। भाई ये जिनेंद्र भगवान ने बात बताई ऐसी महा अद्भुत है, हमें तो भाई साहब महेंद्र भाई दूसरे को समझाने को मत जाना भाई, हम स्वयं समझे बहुत हो गया, नाराज नहीं होना वो, ये तो हमको
कहेंगे तो पागल ही कहेंगे।
हाँ, वो लोग बोलेंगे कहाँ ये घूम रहे, ये हमारे अरविंद भाई 12 साल से आ रहे, लोग पूछते कहाँ जा रहे तुम, क्या तुम्हारा अभी स्टडी कम्प्लीट नहीं हुआ है, क्या करे। ये एक एक ऐसी अद्भुत अद्भुत बातें आती है इसमें कि सोच नहीं पाते हम। चलो आगे, तो ये षटगुणी हानि वृद्धि रूप तो केवल ज्ञान में भी होगी ही होगी। हाँ,
समुद्र में वो ज्वार भाटा आता है ना, भरती ओटी मराठी में कहते हैं ना, तो पानी कम होता होगा थोड़ा और फिर आता होगा ज्यादा, है वहीं पर है ना। हाँ, केवल ज्ञान होने के बाद भी होता है। अब आगे पढ़ेंगे 15 पेज पर। उन 7 नयों में से, 7 नय अभी हमने देखे थे ना, द्रव्यार्थिक के 3 और पर्यार्थिक के 4, नयगम, संग्रह और व्यवहार, इन तीन नयों में नाम, स्थापना आदि सभी निक्षेप होते हैं। शॉर्ट में कहना है तो नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव कहते हैं, या नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, छह भी बताते हैं, छह है। क्योंकि इन नयों के विषयभूत तद्भव सामान्य और सादृश्य सामान्य में सभी निक्षेप संभव है। देखो, ये सादृश्य सामान्य कहो या महासत्ता कहो, जब सत कहा तो सत में सभी द्रव्य आ गए, सभी द्रव्य आ गए ना, तो ये जीव द्रव्य है, ये पुद्गल द्रव्य है, उसमें सभी हम नाम से उसको कह सकते हैं, तो नाम निक्षेप आ गया उसमें। फिर स्थापना, उसमें हम द्रव्यों में अलग अलग स्थापना भी कह सकते हैं, यानी ये बताएंगे आगे कि इसमें सभी नयों की अपेक्षा से बात होगी, यानी ये जो नए हैं वो सभी निक्षेपों को विषय कर सकते हैं। निक्षेप हमने कौन से देखे, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, क्षेत्र निक्षेप, काल निक्षेप और भाव निक्षेप, वे सभी निक्षेपों को विषय करने वाले ये तीनों नए हैं। नहीं, कहीं कहीं चार लगाते, वो सामान्य तरीके से, गलती कुछ नहीं है, यहाँ तो छह बातें बताएंगे। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, द्रव्य क्षेत्र काल भाव लगाना, नाम स्थापना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। अब यहाँ शंकाकार क्या पूछते रहे हैं कि द्रव्यार्थिक नय में भाव निक्षेप कैसे संभव है। अभी हमने निक्षेपों की चर्चा नहीं की है, परंतु भाव निक्षेप क्या होता है वो बता देंगे। जैसे वर्तमान समय को जानने वाला वो ऋजु सूत्र नय एवं भूत नय वगैरह सभी हमने देखे थे, जानने वाला वो नय की बात थी। अब जो पदार्थ में क्या है, वर्तमान पर्याय है, तो उसको कहेंगे भाव निक्षेप। वर्तमान पर्याय वाला जो द्रव्य है, द्रव्य में हम देख रहे हैं ना, भाव निक्षेप कहाँ होगा, ज्ञान में होगा कि द्रव्य में होगा। निक्षेप कहाँ होते हैं, गेय में, द्रव्य में, सामने जो अभी हमारे सामने जो द्रव्य उसमें निक्षेप होते, तो भाव निक्षेप किस में होगा, द्रव्य में। और उसकी जानने वाली पर्याय कौन सी होगी, वो रुजु सूत्रने वाली जो कुछ होगी वो, बराबर। तो यहाँ प्रश्नकार का प्रश्न क्या है कि आप भाव निक्षेप यानी वो वर्तमान पर्याय वाला ले रहे, तो वो द्रव्यार्थिक नय में वो वर्तमान पर्याय वाला कैसा होगा, कि भाव निक्षेप को द्रव्यार्थिक नय कैसे जानेगा, प्रश्न पहले समझना। भाव निक्षेप किसको बताता है, वर्तमान पर्याय को, और द्रव्यार्थिक नय किसको जानता है, वो पर्याय की बात नहीं करता, वर्तमान है भूतकाल है उसकी बात नहीं करता। तो ये भाव निक्षेप जो वर्तमान पर्याय है उसको आप द्रव्यार्थिक नहीं जानता ऐसा क्यों कहते हो, ऐसा प्रश्नकार का प्रश्न है। पहले प्रश्न समझेंगे फिर उसका समाधान हमें ज्यादा क्लैरिटी से पता चलेगा। देखो, द्रव्यार्थिक नय में भाव निक्षेप कैसे संभव है, अर्थात जिस पदार्थ में भाव निक्षेप होता है वह तो उस पदार्थ की वर्तमान पर्याय है, बराबर। परंतु द्रव्यार्थिक नय सामान्य को विषय करता है, पर्याय को तो विषय करता नहीं है, इसलिए यह अभी शंका ही चल रही है। द्रव्यार्थिक नय में जिस प्रकार दूसरे निक्षेप घटित हो जाते हैं उस प्रकार भाव निक्षेप घटित नहीं हो सकता। भाव निक्षेप का अंतर्भाव तो पर्यायार्थिक नय में संभव है, यह पूरी शंका है। शंकाकार ने ऐसी शंका क्यों उठाई, भाव निक्षेप यानी द्रव्य की वर्तमान पर्याय, उसको जानने वाली पर्याय को हम नय को क्या कहेंगे, पर्यायार्थिक नय कहेंगे। और यहाँ द्रव्यार्थिक नय में उसको बताया, भाव निक्षेप भी द्रव्यार्थिक नय भाव निक्षेप को भी जानता है, ऐसा क्यों कहा, प्रश्न ख्याल में आता है, उसका समाधान, उसका समाधान देखिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य को ही भाव कहते हैं। क्या कहा, अकेले पर्याय को नहीं लिया, वर्तमान पर्याय सहित वाला द्रव्य लिया, वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य लिया। जब हम द्रव्य कहते हैं तो उसमें द्रव्य की परिभाषा हमने क्या देखी थी, गुण पर्यायवाद द्रव्य, तो उसमें द्रव्य में उसके अनंत गुण है कि नहीं है, और पर्याय कितनी है उसमें, अनादि अनंत पूरा प्रवाह क्रम उसका, उसी को द्रव्य कहेंगे हम। तो क्या पूरे प्रवाह क्रम में वर्तमान पर्याय आती है कि नहीं आती? हाँ, तो वर्तमान पर्याय से परिपूर्ण ऐसा ही तो द्रव्य कहलाएंगे हम उसको। तो ये अभी बता रहे, वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य को ही भाव कहते हैं, और वह वर्तमान पर्याय भी द्रव्य की आरंभ से लेकर अंत तक की पर्यायों में आ ही जाती है। यानी अनादि अनंत जो पर्यायों का क्रम है उसमें वर्तमान पर्याय भी इंक्लूडेड है। तथा द्रव्य अर्थात सामान्य द्रव्यार्थिकने का विषय है, जिसमें द्रव्य की त्रिकालवर्ती पर्याय वो दंड निकाल देना, फुल स्टॉप वो निकाल देना वहां से। त्रिकालवर्ती पर्याय अंतर्निहित है यानी उसमें गर्भित है। जब हम द्रव्यार्थिकने का विषय क्या है, द्रव्य है, तो क्या द्रव्य में उसकी सभी पर्याय आएगी कि उसको अलग निकाल दिया हमने? द्रव्य में से अगर गुण पर्याय को निकाल दोगे तो क्या बचेगा? कुछ है ना, हमने उसको गौण किया है, परंतु गौण किया अर्थ उसको उसमें से नहीं है ऐसा नहीं होता, क्योंकि पर्याय बिना द्रव्य होता ही नहीं है। जब हम सामान्य की चर्चा करते हैं, जब हम सोना या सच लेते हैं, तो क्या उसमें वो डिजाइन वगैरह है कि चले गए सब? उसकी पर्याय है ना। जब हम सोना कहेंगे, आपके पास कितना सोना है, तो क्या उसमें से वर्तमान पर्याय चली गई, क्या है उसमें? हम उसकी दृष्टि कर नहीं है वो बात अलग, हम उसको देख नहीं रहे, परंतु अभी हमको जो सोना, अभी कितना सोना है जरा मतलब बताओ, तो आपको ये बंगड़ी है या हार है वही तो दिखाना पड़ेगा। और वो जो पर्याय है वो अनादि अनंत पर्यायों में से एक पर्याय है। तो द्रव्य जब कहते हैं हम, तो उसमें वो गर्भित है ऐसा समझना। देखो भाव कहते हैं, ये भाव निक्षेप वाला भाव, भाव निक्षेप किसको कहना है? तो वर्तमान पर्याय युक्त द्रव्य, उस पर्याय से युक्त द्रव्य। जैसे जीव का राग कहेंगे तो हमने अकेले राग की बात की, और रागी जीव कहेंगे तो पूरा द्रव्य वो रागी हो गया ना, यानी उस पर्याय के साथ हमने द्रव्य को अभेद करके वो रागी जीव का है, तो वर्तमान में वो रागी है। तो राग को हम लक्ष्य कर रहे हैं क्या, रागी जीव को लक्ष्य कर रहे हैं? तो पूरा हमने द्रव्य लक्ष्य में लिया, ये इसको भाव के निक्षेप का कार्य हुआ। देखो वर्तमान पहले, फिर से पढ़ती पहले लाइन से, वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य को ही भाव कहते हैं, और वह वर्तमान पर्याय भी द्रव्य की आरंभ से लेकर अंत तक की पर्यायों में आ ही जाती है, यानी अनादि अनंत पर्याय में वो भी शामिल है। तथा द्रव्य अर्थात सामान्य द्रव्यार्थिकने का विषय है, जिसमें द्रव्य की त्रिकालवर्ती पर्याय अंतर्निहित है, यानी सामान्य में विशेष गर्भित ही है। हम विषय कर रहे हैं सामान्य को, परंतु उसी में गौण कर दिया है हमने विशेषों को। भारत की दृष्टि करते हैं तो उसमें सभी प्रांत है कि निकाल दिया उनको, राजस्थान महाराष्ट्र गुजरात सब है, अखंड भारत में वे है ना, अभी भेद है उसकी दृष्टि नहीं हम करें, उसको अलग अलग नहीं गिना रहे, परंतु वो सभी है वहां पर। अतएव द्रव्यार्थिक नय में भाव निक्षेप भी बन जाता है। यहाँ पर पर्याय की गौणता और द्रव्य की मुख्यता, द्रव्यार्थिक नय से जब देखते हैं तो मुख्यता हमने द्रव्य की है, वो वर्तमान पर्याय की हम मुख्यता नहीं कर रहे, द्रव्य की मुख्यता कर रहे। यानी हम राग की मुख्यता नहीं कर रहे, रागी जीव यानी वो जीव की मुख्यता कर रहे, ख्याल है? डिफरेंस ख्याल में आता है ना, पर्याय को मुख्य नहीं कर रहे, द्रव्य को ले। तो द्रव्य की मुख्यता से भाव निक्षेप का द्रव्यार्थिक नय में अंतर्भाव समझना चाहिए, यानी द्रव्यार्थिक नय भाव निक्षेप को भी जानेगा। इस प्रकार शुद्ध द्रव्यार्थिक संग्रह नय में भी, ये शुद्ध क्यों बात आई? देखो संग्रह नहीं है, द्रव्यार्थिक नहीं है, उसके पीछे शुद्ध लगाया तो उसका अर्थ क्या है? वो सत वाला लेना, शुद्ध संग्रह द्रव्यार्थिक सत, ने उसमें कोई भेद नहीं किया, सभी जो कुछ है उसको सबको उसने इंक्लूड किया, तो उसको कहेंगे शुद्ध द्रव्यार्थी। जब जब इकट्ठा सबको संग्रह करेंगे तो शुद्ध द्रव्यार्थी कहेंगे। तो शुद्ध द्रव्यार्थी संग्रहण में भी भाव निक्षेप का अंतर्भाव विरोध को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उसमें तो सभी द्रव्यों को लिया उसने। क्योंकि जो महासत्ता, महासत्ता ने वो सत ये लक्षण जो है सभी में अस्तित्व है, वो महासत्ता हुई। जैसे हम सब मानव है तो मानव की अपेक्षा वो उसकी महासत्ता हो जाएगी, और ये भारतीय है, अमेरिकन है, चाइनीज है, जापानीज है, वो उसकी अपनी अपनी सत्ता हो जाएगी, वो उसको हम अवांतर सत्ता कहेंगे। तो जो महासत्ता अपनी कुक्षी में समस्त विशेष सत्ताओं को समाविष्ट किए हुए, जब हम मानव कहते हैं तो विशेष सत्ताएं ने वो भारतीय, जापानी, अमेरिकन सब उसमें है कि नहीं है, अभी हमने उसको कंसीडर नहीं करे, पर उसके अंतर ही है। महासत्ता के अंतर्गत वो अवांतर ने अपनी अपनी सत्ता बिल्कुल सेफ है वहां पर। जब हम मानव है सब ऐसा कहेंगे तो उसमें प्रत्येक का, अमेरिकन का अपना, उसकी अपनी नेशनैलिटी, इंडियन की अपनी नेशनैलिटी, चाइनीज वाले की अपनी नेशनैलिटी, सबकी अपनी अपनी बिल्कुल सेफ है। फिर भी जब हम मानव कहेंगे तो सब एक बैनर के नीचे आ जाते हैं। तो महासत्ता अपनी कुक्षी में समस्त विशेष सत्ताओं को समाविष्ट किए हुए है, यानी वो उसके अंदर इंक्लूडेड है, गर्भित है सब। और जो सदाकाल अवस्थित है उसे ही भाव रूप से स्वीकार किया गया है, ख्याल है ना? यानी वर्तमान में जो है वो हमेशा रहने वाला है, उसको हम भाव स्वरूप लिया हुआ द्रव्य। अभेद रूप से वस्तु को जब भी ग्रहण किया जाएगा तब ही वह वर्तमान पर्याय से युक्त तो होगी ही। हमको अभेद वस्तु को लेना है ख्याल में। अभेद किसको कहते हैं? पूरी की पूरी वस्तु होनी चाहिए। तो हम वर्तमान पर्याय को निकालेंगे तो वस्तु पूरी होगी कि अधूरी होगी? अधूरी होगी ना। तो जब जब हम अभेद वस्तु लेंगे ख्याल में तो वो वर्तमान पर्याय से, क्योंकि अभी हम वर्तमान में द्रव्य को अभेद तरीके से ले रहे हैं तो वर्तमान में उसकी पर्याय जो है वो उसमें भी है ही है। क्या लिखते हैं? अभेद रूप से वस्तु को जब भी ग्रहण किया जाएगा तब ही वह वर्तमान पर्याय से युक्त होगी ही। हम वर्तमान पर्याय को नोटने से कि पर्याय की दृष्टि नहीं कर रहे, पर्याय की दृष्टि करेंगे तो भेद हो जाएगा। तो ये पर्याय है, ये गुण है, ये उसके प्रदेश है, ये सब हम गौण सबको करेंगे। अभेद एक द्रव्य है ऐसी दृष्टि करेंगे तो उसमें वर्तमान पर्याय भी है। इसलिए वर्तमान पर्याय का अंतर्भाव महासत्ता में हो जाता है। और शुद्ध संग्रहण का महासत्ता विषय है, सत ऐसे कहते हैं, सबको इकट्ठा कर दिया, संग्रह कर दिया ना उसका। संग्रहण का कार्य क्या है? सबको इकट्ठा करना। शुद्ध संग्रहण ने ये जीव है के पुद्गल है कुछ नहीं कंसीडर किया, सबको एक बैनर के नीचे लाया उसको। सत कहते ही सब आ गए तो उसको कहेंगे शुद्ध संग्रहण। शुद्ध संग्रहण का महासत्ता विषय है, इसलिए अतएव संग्रहण में भी भाव निक्षेप का अंतर्भाव हो जाता है। यहाँ पर भी पर्याय की गौणता और द्रव्य की मुख्यता समझना चाहिए। हमारा प्रयोजन क्या है? हम किसको मुख्य कर रहे हैं? यदि हम पर्याय को मुख्य करेंगे तो वो पर्यायार्थिक नय का विषय हो जाएगा। यदि वर्तमान पर्याय को कंसिडर करके हम द्रव्य की मुख्यता कर रहे हैं तो द्रव्य मुख्य हो रहा है, वो द्रव्यार्थिक नय का विषय हो जाएगा। हम मुख्य किसको कह रहे हैं? द्रव्य को के पर्याय को? देखो एक कोई कांच है, कलर वाली है ना, लाल कांच है, तो क्या हम रंग को मुख्य कर रहे हैं तो हम वो लाल है ऐसा उस पर हमारी नजर जाएगी? और हम रंगीन कांच कहेंगे तो क्या है? कांच को मुख्य किया हमने, रंग को मुख्य नहीं किया, कांच को मुख्य किया। वैसे पर्याय को मुख्य करेंगे तो पर्यायार्थिक नय का विषय होगा, और उस पर्याय को जानकर द्रव्य को मुख्य करेंगे तो द्रव्यार्थिक नय का विषय। अभेद को लिया ना हमने कंसीडर, पर्याय तो वहां से हटा नहीं सकते, परंतु लक्ष्य किसका करना है ये हमारे हाथ की बात है। द्रव्य को मुख्य करना है कि पर्याय को मुख्य करना है? देखो सादृश्य सामान्य का अर्थ होता है महासत्ता, और तद्भव सामान्य ने अपनी अपनी सत्ता, वो अवांतर सत्ता वाली। ऊपर आया होगा संस्कृत में है क्या, तथा निगम निखेवती हाँ तब्भव सारी छ सामन नमी सव निखेव संभवाद। महासत्ता अवांतर सत्ता हो जाएगी। अब आगे पढ़ेंगे मुख्यता समझनी चाहिए। अब ये जो नौ वाली जो शंका है वो पहले गाथा पढ़कर नीचे हम पढ़ेंगे उसका। 16 पेज पर आए हम। नामं ठवणादविये तिये सदवठ्यस्य निखेयो भावो दुपजवठ्य परुवणाये स परमठो। नीचे शंका लिखे ना, वहां लिखे उसका अर्थ है क्या शंका है। नाम स्थापना ठवना लिखा है ऊपर, ठवना यानी स्थापना, और द्रव्य ये तीनों द्रव्यार्थिक नय के निक्षेप है, यानी इनको तीनों को जानने वाला उसको हम द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। और भाव पर्यायार्थिक नय की प्ररूपणा है, यही परमार्थ सत्य है। अभी ये तो ये गाथा किसमें से ली उन्होंने, सन्मति तर्क नाम का कोई ग्रंथ है। अभी शंका करके शंका पूरी नहीं हुई है तो उसने किसी अन्य शास्त्र का उद्धरण देके फिर आगे उनकी शंका पूछी। तो ये जो अभी हमने गाथा पढ़ी उसका अर्थ देखा, क्या देखा कि द्रव्यार्थिक नय के निक्षेप कौन से हैं, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप और द्रव्य निक्षेप। और भाव ये क्या है, पर्यायार्थिक नय की प्ररूपणा है, वो पर्यायार्थिक नय का विषय है, ऐसा सन्मति तर्क नाम के ग्रंथ में लिखा है। लिखा है ना नीचे सन्मति तर्क के, वो कर्क हुआ है उसको तर्क करना, सन्मति तर्क ग्रंथ का नाम है। क हुआ है, क छपा है उसको त करना, सन्मति तर्क। नीचे आया ये शब्द सन्मति तर्क आया होगा
समाधान में पहले ले जाए।
सन्मति तर्क के इस कथन से यानी शंकाकार ने ये गाथा सन्मति तर्क में से दी, और अब वो क्या कहता है, ये जो वहां सन्मति तर्क में ये जो कथन किया है कि भाव निक्षेप का द्रव्यार्थिक नय में अथवा संग्रह नय में भी अंतर्भाव होता है, यह व्याख्यान क्यों नहीं विरोध को प्राप्त होगा। सन्मति तर्क वालों ने क्या कहा, भाव निक्षेप है वो पर्यार्थिक नय का विषय है। तो अब शंकाकार पूछता है और आप कहते हो कि भाव निक्षेप वो द्रव्यार्थिक नय का भी विषय हो सकता है, तो उनका और आपका विरोध नहीं होता है क्या, उनका कहना और आपका कहना इसमें विरोध है, ये शंकाकार का कहना है। हेलमेन शंकाकार का यह अभिप्राय है कि सन्मतिकार ने, सन्मतिकार ने वो सन्मति तर्क नाम का जो ग्रंथ लिखा है उसने भाव निक्षेप का केवल पर्यायार्थिक नय में अंतर्भाव किया है। वो भी निकाल देना वहां से, केवल लगाया ना तो केवल के बाद भी नहीं लगेगा, केवल पर्यायार्थिक नय में अंतर्भाव किया है, यानी मात्र पर्यायार्थिक नय में ही उसका अंतर्भाव किया है, परंतु यहाँ पर उसका द्रव्यार्थिक नय में भी अंतर्भाव किया गया है। और आप कहते हो तो सभी निक्षेप लगते हैं द्रव्यार्थिक में, इसलिए यह कथन तो सन्मतिकार के कथन से विरुद्ध प्रतीत होता है, ये शंकाकार की शंका है। शंका ख्याल में आती है, अभी उसका समाधान। ऐसी शंका ठीक नहीं है, क्योंकि सन्मति तर्क में यानी उस ग्रंथ में जो पर्याय रूप स्वलक्षण क्षणिक है इसे भाव रूप से स्वीकार किया गया। वहां भाव निक्षेप में भाव का अर्थ उन्होंने पर्याय किया है सन्मति तर्क वालों ने, और अभी जो इन्होंने बताया था उसका अर्थ क्या लिया था, वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य को लिया था, उन्होंने पर्याय को मुख्य किया था, और यहाँ ने इन्होंने भाव में द्रव्य को लिया है। अर्थात सन्मति तर्क में पर्याय की विवक्षा से कथन किया है, और यहाँ पर द्रव्य से अभिन्न वर्तमान पर्याय को द्रव्य मानकर कथन किया है। अभी आपने पूछा वो जीव का राग है उसको देखा है कि रागी जीव को देखा है, इस तरह से यहाँ द्रव्य की मुख्यता है, इसलिए वो द्रव्यार्थिक नय का विषय होगा, इसलिए कोई विरोध नहीं आता। देखो शास्त्र में कहीं विरोध नहीं आता, ये हमारी मानने में उसको समझने में गलती हो सकती है। कौन सी अपेक्षा कहाँ कौन सा कथन आता है उसको बराबर समझना ये अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमें समझना है ना, लिखने वालों ने तो समझ कर लिखा है, हम सही समझेंगे तो अपना कल्याण होगा। ऋजु सूत्र नय में अब ये पहले में पहले क्या किया, द्रव्यार्थिक नय में कौन कौन से निक्षेप लग सकते हैं सभी उन्होंने बताया, सभी निक्षेप लगेंगे। भाव निक्षेप के बारे में कोई कन्फ्यूजन था शंकाकार, तो वो भी कन्फ्यूजन दूर कर दिया। अब ऋजु सूत्र नय में कौन कौन से निक्षेप लगेंगे वो बात बता रहे। ऋजु सूत्र नय में स्थापना निक्षेप को छोड़कर शेष सभी निक्षेप संभव है, क्योंकि ऋजु सूत्र नय में सादृश्य सामान्य का ग्रहण नहीं होता है, और स्थापना निक्षेप सादृश्य सामान्य की मुख्यता से होता है, यानी महासत्ता की मुख्यता से वो निक्षेप होता है। जब इसकी चर्चा आगे आएगी निक्षेपों की और नयों की, और भी कन्फ्यूजन अपना दूर होगा। देखो एक शंका लेते हैं, ऋजु सूत्र तो पर्यायार्थिक नय है, उसमें द्रव्य निक्षेप कैसे घटित हो सकता है, ये है ना, उसमें हमने कौन कौन से देखे, स्थापना का तो अलग निकाला, अभी नाम निक्षेप तो हो सकता है, फिर द्रव्य क्षेत्र काल भाव में द्रव्य निक्षेप कैसे होगा, क्योंकि वो तो पर्याय को विषय करने वाला है, ऋजु सूत्र नय वर्तमान पर्याय को जानने वाला है, तो प्रश्न क्या पूछते है, द्रव्य निक्षेप उसमें कैसे घटित होगा, वहाँ प्रश्न क्या पूछा था, द्रव्यार्थिक नय में भाव निक्षेप कैसे हो सकता है, अब यहाँ पूछ रहे हैं पर्यायार्थिक नय में द्रव्य निक्षेप कैसे होगा, ऐसी शंका ठीक नहीं है, क्योंकि ऋजु सूत्र नय में वर्तमान समयवर्ती पर्याय से अनंत गुणान्वित एक द्रव्य ही तो विषय रूप से संभव है। ख्याल है क्या कहते हैं, वर्तमान पर्याय समयवर्ती पर्याय से, वर्तमान पर्याय के पर्याय को हमने देखा था, तो उसमें कौन दिख रहा है पर्याय में, पूरा द्रव्य उस पर्याय रूप से, देखो विशेषार्थ करते हैं, पर्याय द्रव्य को छोड़कर स्वतंत्र नहीं रहती, और ऋजु सूत्र का विषय वर्तमान पर्याय विशिष्ट द्रव्य है, इसलिए ऋजु सूत्र नय में द्रव्य निक्षेप भी संभव है। अब इसको हम कल फिर और दोहरा कर फिर आगे बढ़ेंगे। जावानी के ज्ञान ते